ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பரபிரம்மா பரமேஸ்வர் சிருஷ்டிகே கணகணமே வியாப் सबके अंदर अंतर्यामी रूप से वही प्रेरणा दे रहे, उनके ही असीम कृपा से हम लोग ऋग्वेद या ऐतरेय उपनिषद के ऊपर विचार कर रहे थे। तो सबसे पहले यहां श्रुति ने ये बता दिया, आत्मवा इदम एक एव अग्र आसीत, अर्थात ये जो जगत दिख रहे उससे पहले केवल आत्मा ही था। संस्कृत में आत्मा शब्द है पुल्लिंग, हिंदी में से लिंग में प्रयोग कर दे, उसकी आत्मा जाति है। किसी ने पूछा महाराज ये कैसा है, जैसा मामा है चाचा है सब पुल्लिंग है आकारांत है, तो आत्मा भी पुल्लिंग होना चाहिए। किंतु हिंदी में उसकी आत्मा जाति है, आत्मा गई है प्रयोग होता। तो मैंने कहा वह मामा है उसके आगे वो मामी पड़ी है, चाचा के आगे चाची पड़ी है, आत्मा के आगे कोई आत्मी नहीं है, इसलिए वो स्त्रीलिंग है। तो इसलिए आत्मा है, केवल आत्मा ही था। ये सुनते हुए शिष्य के मन में जिज्ञासा हो गई, जिज्ञासु के अंतकरण में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो उन्होंने अपने गुरुजी से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, जो श्रुति बता रही है इस जगत से पहले केवल आत्मा ही था, ये था शब्द प्रयोग कर रहे भूतकाल को, तो इसका मतलब पहले ही एक ही आत्मा था, क्या इस समय में वो एकमात्र नहीं है? स्वाभाविक है प्रश्न, होना ही चाहिए। तो था शब्द प्रयोग किया है, पहले था इसका मतलब अभी नहीं। जैसा पहले मैं बच्चा था इसका मतलब अभी बच्चा नहीं है, ये सिद्ध होता है, क्योंकि अभी बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। वैसे ही पहले आत्मा था इसका मतलब अभी नहीं है, ये प्रश्न होना स्वाभाविक है। शिष्य ने भी प्रश्न किया, क्या भगवान आत्मा पहले ही था अभी नहीं है? तो आचार्य ने कहा ऐसी बात नहीं है, पहले भी था वो अभी भी है, किंतु इतना अंतर है, पहले ये जो नाम रूपादि था व्यवहार हो रहा था वो अव्यक्त था, केवल कारण रूप में था। अभी आत्मा होने पर भी ये नाम रूप को लेकर वो अनेक जैसा भी है, जैसा कल भी मैंने बताया था, पहले यहां खेती ही थी इसका मतलब अभी खेती नहीं, अभी उसमें घास आ गए, तो घास आते समय में वहां खेती नहीं है क्या? वहां भी खेती है। तो पहले खेती ही थी मतलब क्या है, पहले केवल खेती ही थी, अभी उस खेती के साथ साथ उसमें हरे भरे घास भी आए हैं, अथवा पहले यहां केवल जल ही समुन्द्र ही था, जल ही जल था, क्या अभी जल नहीं? अभी भी है, किंतु अभी उसमें तरंग है, फेना है, बुदबुदा है, ये आ रहे। वैसे ही ये शिष्य पहले केवल वो कारण रूप से, आत्म रूप से व्यवहार होता था, अभी भी कारण होने पर भी ये नाम रूप उपाधि के द्वारा वो अलग अलग व्यवहार हो रहा है। अंतर इतना ही, अभी भी एक ही है, इसलिए दो तत्व नहीं है, इस प्रकार समाधान किया। इसलिए बोल रहे आत्मा वा इदमेव अग्रे आशित। तो पुनः शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान ठीक है, हमारे मन में जो जिज्ञासा थी उसका तो आपने समाधान किया, किंतु आगे नान्यत किंचना मिशत ये क्यों कहा दिया? अर्थात उससे शिवा अन्य कोई व्यापार वाला नहीं था। पहले तो कहा आत्मा एक ही था, इतने से काम तो चल जाएगा। उससे अतिरिक्त बता रहे श्रुति नान्यत किंचन, नान्यत मतलब उस आत्मा से अतिरिक्त और कोई व्यापार वाला नहीं था, ये क्यों कहा दिया? शिष्य ने पुनः प्रश्न किया, तभी आचार्य ने कहा हे शिष्य, श्रुति ने इसलिए कहा दिया ये क्योंकि अन्य अन्य जो दार्शनिक है, जैसा नैयायिक, वो ईश्वर से अतिरिक्त एक परमाणु मानते हैं। सांख्य लोग है, पुरुष से अतिरिक्त एक प्रकृति भी उनकी रहती है। नैयायिकों की सृष्टि विलक्षण है, ईश्वर सृष्टि करता है, निमित्त कारण को ईश्वर मानते, वेदांती भी मानते, कोई अंतर नहीं। और ईश्वर कैसा सृष्टि करता है, वो चारों के परमाणु मानते हैं, पृथ्वी का भी दो भाग मानते, एक कार्य पृथ्वी और एक कारण पृथ्वी मानते। तो कारण का मतलब है परमाणु, पृथ्वी के परमाणु वो नित्य मानते, जैसा आजकल वैज्ञानिक लोग भी मानते कोई नाश नहीं होता है, परिवर्तन होता है, नित्य होता है। उसी प्रकार पृथ्वी के परमाणु उसमें चार रहते हैं, रूप रस गंध और स्पर्श, चार गुण मानते हो। और उसके बाद जल के परमाणु उसमें तीन गुण मानते हैं, और उसके बाद तेज के परमाणु उसमें दो गुण मानते हैं, और वायु का परमाणु उसमें एक ही स्पर्श मानते हैं। ये चार परमाणु मानते हैं, आकाश के उत्पत्ति नहीं मानते, वो लोग नित्य मानते। तो ये चार परमाणु हैं पृथ्वी के, जल के, अग्नि के और वायु। ईश्वर ने इन परमाणु को मिला करके जगत बनाया। तो एक तो पहले ईश्वर था, आत्मा था, उससे अतिरिक्त क्या है, परमाणु बेमाना है। इसलिए यहां श्रुति ने कहा उससे शिवा और कोई नहीं था, उनको हटाने के। और सांख्य भी देखिए, सांख्य की सारी सृष्टि प्रकृति से ही माना जाता है, उनका जो पुरुष है असंगोयम पुरुषः, वो कुछ नहीं करता है, बैठे रहता है, केवल भोक्ता मानते, विलक्षण स्वभाव है उनको, चुपचाप बैठता है, भोक्ता है। और प्रकृति ही सारी कार्य करती है, तो उनके मत में पुरुष भी है प्रकृति भी है, नित्य मानते। इसलिए हे शिष्य, जो सांख्य है उस आत्मा से अतिरिक्त एक नित्य प्रकृति मान रहे, नैयायिक है परमाणु मान रहे, किंतु श्रुति को ये सम्मत नहीं है। इसलिए यहां कहा दिया केवल आत्मा ही था, उससे अतिरिक्त और कोई क्रिया वाले नहीं थे, इसलिए कहा दिया। और उसके बाद उन्होंने एक क्षण किया, जगत की उत्पत्ति करने के लिए एक क्षण किया। एक क्षण का मतलब विचार, कल भी बता दिया था मैंने, जैसा कोई मकान बनाना चाहता है सबसे पहले अपने मन में वो विचार करता है, मन में मकान बनाता है और उसके बाद नक्शा बनाता है, कागज में मकान बनाता है, तभी जाके धरती में मकान बनाता है। तो मन से लेकर कागज में, कागज से लेकर धरती में आ गए, किंतु परमात्मा का केवल मन में मात्र है, चिंतन किया उन्होंने, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जो कर्म है वो अनादि से पड़ा है, उस कर्म के अनुसार उनको अलग अलग लोक और अलग अलग लोक में रहने वाले जीव है, उनको भी सृष्टि करना पड़ेगा। इसलिए सारे जो प्राणियों का कर्म को लेकर उन्होंने एक क्षण किया। एक क्षण का मतलब है इतने जो जीव है उनका अलग अलग कर्म है, उसको लक्षित करके उन्होंने चिंतन किया, उसके बाद सृष्टि में प्रवृत्त हो गए। तो दूसरे मंत्र में यहां सृष्टि बता रहे, इस प्रकार उन्होंने आलोचना करने के बाद कैसा सृष्टि किया ये बता रहे दूसरे मंत्र में। पहले मंत्र देखे, स इमान लोकान सृजत, अम्बो मरिचिर मरा मापोधो अम्ब परेणा दिवं द्यो प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरिचयः पृथिवी मरो या अदस्तात्तापा। इस प्रकार उस परमात्मा ने एक क्षण करने के बाद अर्थात आलोचन करने के बाद अर्थात विचार करने के बाद इन लोकों को उन्होंने असृजता मतलब उत्पन्न किया। अभी यहां शीदा अम्बहा मरो मरुचि बोल रहे, भूर्भुवा स्वा को बोल रहे। अभी थोड़ा यहां विचार करना है, देखिए सृष्टि अलग अलग बता रहे हैं श्रुति, एक मत नहीं सृष्टि में। तैतरीय उपनिषद में आप देखिए तस्माद्वा, अर्थात इसका पीछे का उपनिषद, तस्माद्वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता, उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, आकाश से मतलब आकाश विशिष्ट चैतन्य से, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी बता रहे। छांदोग्य उपनिषद में जाके थोड़ा देखिए, तत्तेजो असृजता साइक्षता, उन्होंने एक क्षण किया, सदैव सौम्या इदमग्रे आसीत, जो सत शब्द से कहा हुआ जो परमात्मा है उसने एक क्षण किया, आलोचन किया, चिंतन किया, तेज को उत्पन्न किया और तेज से जल, जल से पृथ्वी बता दिया। मुंडक में जाके देखे वहां अलग सृष्टि, बृहदारण्य के तो अलग है, मन और शत्रु बताओ, घोड़ा बन गया, घोड़ी बन गया, गदा बन गया, अलग अलग सृष्टि हो। ये श्रुति अलग अलग क्यों बता रहे? तो कभी क्रमिक सृष्टि बता रहे, कभी एक साथ सृष्टि बता रहे, इनमें कौन सा मान्यता है? विचारकों ने विचार किया, दोनों देखा जाता है। जैसा आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में सृष्टि कर रहे कौन? आप कर रहे, सोए हैं आप। एक तो अपने ही समान दूसरा शरीर को बना दिया और वो शरीर जाके गंगा जी में स्नान कर रहे, अपने गंगा जी को भी बना दिया और शिव जी को भी बना दिया और पुष्प भी बना दिया और उसके ऊपर जल चढ़ा रहे। तो स्वप्न में आप सृष्टि कर रहे, कभी क्रमिक देखा जाता है, कभी कभी एक ही साथ राजा और सैनिक सामने देखते, पूरे के पूरा एक साथ आप सृष्टि करते, हाथी घोड़ा सैनिक एक साथ उत्पन्न करते, उसमें कोई क्रमिक नहीं, एक साथ कर रहे। जैसा वहां दृष्टांत दिया, आपके हाथ में बेर या अथवा कोई अवला फल है, चाहे तो आप एक साथ, जैसा पांच रख दिया आपने, पांचों को एक साथ फेंक सकते हैं अथवा क्रम से भी फेंक सकते हैं एक एक करके। वैसा ही सृष्टि क्रमिक भी है और एक साथ भी बता रहे हैं। ऐसा क्यों? इससे सिद्ध होता है सृष्टि वास्तव में है नहीं। यदि होता तो झगड़ा क्यों होता है? वास्तव में नहीं है। सृष्टि के विषय में बहुत मतमतांतर है, विचार करने से कोई समाधान नहीं मिलेगा। अभी कोई वैष्णव यदि हो कहेंगे विष्णु से सृष्टि हो गई, पुराण में भी बताया विष्णु सो गए थे, यन्नाभिसिंधु रोह कांचन लोक पद्मे, ध्रुव जी स्तुति कर रहे, नाभि से कमल निकल गया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, जगत को बना दिया। ये थोड़ा विचार कर दीजिए, विष्णु सोए थे कहां? जल के ऊपर। ये जल को किसने बनाया? जल की सृष्टि नहीं किया ब्रह्मा ने। और कुछ लोग बोलते भगवान शिव जी ने किया, कुछ लोग बोलते दुर्गा के द्वारा, देवी भागवत में देखिए सारी जो ब्रह्मा विष्णु सारी सृष्टि उनसे। इसलिए सृष्टि के विषय में बड़े बड़े विचारकों ने विचार किया, अंततः जाके वेदांति ने कहा अनिर्वाच्य अचिंत्य रचना, आप बता नहीं सकते, बताएंगे तभी यदि हो। रस्सी में आप सर्प देख रहे और किसी से पूछे उस सर्प में कितना विष होगा, कहां से सर्प आ गया, बाद में कहां भाग गया, कोई उत्तर नहीं दे सकते। न कोई आया, न कोई भागा, न कोई उसमें विषय है। किंतु जिस समय में आप देख रहे, आपको सत्य देख रहे और सर्प को देखकर आप भाग रहे, आप गिर गए, आपका पैर टूट गया, आपको दर्द भी हो रहा है, किंतु वहां सर्प नहीं है, वैसे ही सृष्टि देख रही अध्यास रूप से। क्योंकि अध्यास का कोई अलग सत्ता नहीं होता है, अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्त सत्ता भावत्व, रस्सी में आप देख रहे सर्प वो अध्यास है, ये स्वरूप अध्यास है। एक होता है संसर्ग अध्यास होता है, जैसा मान लीजिए रस्सी को छोड़ दिया, बस वेदांतियों को रस्सी सर्प और घटपट यही बोलते हैं बहुत लोग, वो छोड़ दीजिए आप टीवी देखते हैं, कोई ऐसा नहीं टीवी नहीं देख रहे, बहुत कम होंगे। अब टीवी में देख रहे, वहां टीवी में किसी ने मकान को आग दिया, भयंकर आग जल दी धक धक करके, अथवा गोली चला रहे, अभी जो टीवी में एक दूसरा झगड़ा कर रहे हैं, दूसरे के घर में आग लगा दिया, क्या वहां आग है? यदि आग होता तो आपकी टीवी कैसा बची, वो भी जलनी चाहिए। आपकी टीवी तो जली नहीं है किंतु उसमें आग जल रही है, तो वहां आग ही नहीं है, तो आग का ज्ञान कहां से आया? तो ज्ञान भी नहीं रहेगा, और अग्नि का संबंध भी नहीं टीवी के साथ। यदि अग्नि का संबंध हो तो आपकी टीवी जलनी चाहिए, तो इसलिए वहां अग्नि भी नहीं है, अग्नि का ज्ञान भी नहीं है, अग्नि का संबंध भी नहीं, तीनों आरोपित है। आग भी आरोपित है, संबंध भी आरोपित है, और उसका ज्ञान भी आरोपित है। इसको कहते हैं स्वरूप अध्यास, है नहीं स्वरूप आता तीनों अध्यास। वैसे ही रस्सी में क्या सर्प है क्या वहां? नहीं, सर्प नहीं तो उसका ज्ञान कहां से आया? ज्ञान भी नहीं। क्या रस्सी के साथ उसका संबंध हुआ है क्या? नहीं, तीनों नहीं, ये स्वरूप अध्यास है। अर्थात ज्ञान भी अध्यास हो रहे, अर्थ भी अध्यास हो रहे। वैसा ही ये जगत, जगत भी उस परमात्मा में अध्यस्त है, जैसा सर्प अध्यस्त है वैसा ही, अथवा टीवी में जिस प्रकार अग्नि दिख रही वैसा, टीवी में दिखने वाले अग्नि नहीं वह ज्ञान कहां से है? तो ज्ञान भी अध्यस्त है, इसी प्रकार ये जगत का ज्ञान भी अध्यस्त है। तो जगत नहीं है तो संबंध कहां से आएगा? वो भी अध्यस्त है। तो जगत, जगत का ज्ञान और संबंध, ये तीनों उसमें अध्यस्त है। तो सत्य कहां से दिख रहे आपको? यदि कहेंगे महाराज जी अध्यस्त सत्य दिख रहे, ये अधिष्ठान के सत्ता के द्वारा वो सत्य दिख रहे, इसलिए छांदोग्य में कहा एतदात्म्यम इदम सत्यम। जिस अधिष्ठान के सत्ता के द्वारा ये सत्य हो रहे, स्वतः नहीं, रस्सी आपको सत्य दिख रहे, अतः सर्प वो रस्सी के सत्ता के द्वारा सर्प सत्य दिख रहे, इसी का नाम है भ्रम। तो जगत, जगत का ज्ञान, संबंध, तीनों अध्यास हो रहे, स्वरूप अध्यास कहते हैं। और आत्मा का जो जगत में अध्यास हो रहे, ये है संसर्ग अध्यास। जहां स्वरूप अध्यास होता है वो वस्तु मिथ्यमाना है, जैसा जगत मिथ्या है सर्प मिथ्या है, किंतु आत्मा तो मिथ्या नहीं है। यदि आत्मा मिथ्या हो गया, सारा वेदांत हम सुन रहे चौपट हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वहां जगत में जो अध्यास हो रहे, केवल आत्मा का संबंध मात्र है, आत्मा का भी अध्यास नहीं है, आत्मज्ञान का भी अध्यास नहीं हो रहे।